आज हम श्रीमद्भागवतम का सातवां स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या है 19। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदं वदन्वति मज्जतौ नौ। तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जश्चेष्ट तावद्विभूतनुवृतां तदुपेक्षितानां। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाते। प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना नृसिंह भगवान को बहुत उत्तम प्रकार की है, सबके जीवन में लागू होती है, चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, किसी को छोड़ती नहीं, सबके लिए लाभप्रद है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, माता पिता की देखरेख से विभिन्न रोगों की दवाई से तथा जल स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का जो प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहने पर भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि भी माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततोगत्वा भगवान की ही शरण बनते हैं, जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है वो उसकी रक्षा हो जाती है, यह निश्चित ध्रुव है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतएव जब तक कोई भगवान की अहितु की कृपा द्वारा रक्षित न हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवान की अहितु की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई कर भी नहीं पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रहारों का सामना करता रहता है, किंतु अंततोगत्वा वह पूरी तरह प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में 9वें श्लोक में कहते हैं कि संसार के असली दुख चार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा रहा, न तो पा सका है और पाएगा। प्रकृति है क्रियमाणानी गुणी कर्माणी सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसे कठोर नियम पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथा कथित विज्ञानियों, दार्शनिक, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए जोरदार प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनात्मक के स्तर पर उठना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसारित करने को जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षितानाम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहते हैं तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न उच्च लोक में, न ही अधोलोक में भी कभी इस सुखी नहीं बन सकेंगे। रोकड़ा प्रह्लाद महाराज जी कहते ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीचितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदं मदन्वती मञ्जतौ नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहंज श्रेष्ठ तावत् विभो तनुव्रतां त्वदुपेक्षितानां। हे नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को कोई नहीं बचा पाते। सर्वप्रथम हमें ये प्रार्थना में बताया जाता है कि भगवान की उपेक्षा करने वाले तथा कथित भक्तों भी उसमें शामिल हो जाते हैं। भगवान के बारे में अपरिचित दुनिया है, अपरिचित दुनिया में इनका तो कोई अपने आप से, चाहे वो निरीश्वरवादी हो या भगवान के व्यक्तित्व में भी नहीं मानते हैं, वो तो अज्ञानी हैं दोनों। इन दोनों भगवान को जानते ही नहीं, इसीलिए हमेशा उपेक्षा करते रहते हैं। दूसरे हैं जो नवसिखिए भक्त लोग भी हैं, वो भी भगवान की हमेशा उपेक्षा करते रहते हैं। वैसे आते हैं, दर्शनार्थ आते हैं, लेकिन भगवान का सुनना नहीं चाहते, दर्शन करके चले जाते हैं, तो वो भी भगवान की उपेक्षा समझी जाती है। इसीलिए नवसिखिए भक्त को धीरे धीरे प्रगति का मार्ग तो है, लेकिन जब तक उपेक्षा बनाते रहते हैं तो धार्मिकता और उसका पालन उसको बचा नहीं पाता। वैसे तो सारी दुनिया में 99% लोग धार्मिक हैं, दो ही निरीश्वरवादी, सब अपने अपने धर्मों में भगवान के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। कोई निर्गुण है तो कोई सगुण है, लेकिन ये सारी धारणा भी कमजोर पड़ती है। पुण्य का वो ढेर इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो तो स्वर्ग तो ले जाने वाला है, भवसागर पार कराने वाला नहीं, क्योंकि भौतिक सुख भौतिकता की जब तक अपेक्षा बनी रहती है, तो चाहे वो नौसिखिए भक्त भी क्यों ना हो और जो लोग अन्य धर्मों में भी क्यों, ये क्रमानुसार इसकी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं श्रील प्रभुपाद, आपको बारंबार मिलेगी कि कृष्ण भक्ति इन सब धार्मिकताओं से भी परे है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में धार्मिकता से भी परे बताई है, यानी कि जब भगवान की सीधी उपेक्षा कर रहे हैं सभी, भगवान की शरणागति का कोई उपाय नहीं कर, चाहे उनको मौका मिले फिर भी भौतिकता उनको सताती रहती है। इस्कॉन में भी पहले से ही ये बखर जंतर घुस बैठा है, क्योंकि कलयुग ऑल्टर पे भी पहुंच जाता है, बहुत सारी चकासनी तकेदारी इत्यादि सब कुछ बनाए रखना पड़ता है, लेकिन बनाए रखने वाले दंडित होते हैं, बनाए रखने वाले दंडित होते हैं और दूसरे बहानेबाजी करके छटक जाते हैं। अब कहां ये कोई कृष्ण भक्ति कोई फैसले का मामला नहीं या न्याय का भी मामला नहीं, यहां तो सिर्फ एक ही चीज दिखी जाती है, सबको भगवान की सेवा का मौका दिया जाता है। सेवा करने के बावजूद भी यदि कली बैठा अंदर उसमें असाधा सावधान नहीं रहे, असावधानी बनी रहे, तो जानो गया काम से, भगवान की उपेक्षा बनी रहे पुजारियों को सब जगह, ऐसा नहीं कि इस कोण में ही है, चर्च में भी जाओ वहां भी कली बैठा है, ऑल्टर पे बैठता है। तब प्रहलाद महाराज उन्होंने तो कोई भगवान के मंदिरों में तो सेवा नहीं की है, कुछ नहीं किया है, फिर भी उनके मुख में से ऐसा भारी खम शब्द उपेक्षा, त्वद उपेक्षा, यानी भगवान आप जब उपेक्षा करते हैं तब हम भगवान की उपेक्षा करते हैं, भगवान हमारी करता है, वो हम नहीं जानते हैं। जब हम उपेक्षा करते हैं तो भगवान से माफी आराम से मांग लेते हैं, लेकिन कोई गंभीरता नहीं, क्योंकि हम ये भौतिक तीन गुणों के बीच में फंसे रहते, देहात्म भान फंसा रहता है, तो देहात्म भानी के लिए भक्ति नहीं, भक्ति तो जो देहात्म भान से मुक्त हुआ है उसके लिए बताई गई, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समत सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, भगवान की पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति तो मुक्त होने के बाद शुरू होती है। तो ये हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में, श्रद्धालुओं के जीवन में भी श्रद्धावान से ऊपर क्रम बनाया जाता है, कि उसमें प्रगति हो रही कि नहीं, उनको आवश्यक शिक्षाएं प्राप्त हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही तो उसको समझाना, समझाता नहीं तो साम दाम दंड भेद की भी व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है। ये सारा मौका मिलते भी हम यदि मौके का फायदा नहीं उठाते, फायदा किस में उठाना कि हम भगवान की ओर गंभीरता पूर्वक क्यों नहीं आगे बढ़े। हमारी कमजोरियां यदि होती हैं तो समझो पॉलिटिक्स बनी रहती है, कमजोरी से पॉलिटिक्स होती है, ताकत से नहीं। सब जानते हैं कि मुझे दिखावा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से मैं खोखला हूं, अंदर से मैं खोखला हूं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन शरीर भक्त नहीं होता, आत्मा भक्त होती है। तो आत्मा की उपेक्षा हम यदि खुद अपने भौतिक गुणों में फंस कर करते रहते हैं तो वो बेचारा असुरक्षित सुरक्षित नहीं रहेगा। जब ये सुरक्षित नहीं है तो भगवान भी कैसे सुरक्षा करें। गौते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति, आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता, इसलिए क्या हमें ये भी दर्द उजर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि हम गंभीर बने। चलता है चलाओ, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। उपेक्षा, भगवान भी उपेक्षा करना जानते हैं, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भगवान कभी अपने भक्तों की उपेक्षा करते नहीं, प्रणश्यति नहीं प्रणश्यति, लेकिन कौन किस चीज का नाश होता है किसका नहीं होता है वो तो पहले से ही कर देते हैं, लेकिन भक्त बनने के लिए वो तो इनका आग्रह जारी ही रहता है। मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी मां नमस्कार मां मे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रियो से, आत्मा प्रिय होता है। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, लेकिन उसकी अप्रियता कहाँ आई, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के प्रवाह में वो बहा जाता है। उसके लिए सारे उपाय दिए हैं, ऐसे नहीं कि अनेक उपाय, उपाय तो एक ही होता है। लोग कहते हैं अरे बहुत सारे रास्ते हैं भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन भगवान के मत के अनुसार बहुत सारे उपाय नहीं है। केचित केवलया भक्त्या, तो भक्त भगवान और भक्ति जो संबंध बनाने वाली सेवा है, भगवान को प्रिय करने वाली से, वो प्रियता यदि न देखें तो हमारे भक्ति के कार्यों में हम कैसे तुलना करेंगे कि मैंने अच्छी सेवा की, मैं तो बहुत बढ़िया सेवा करना जानता हूँ। वो तो मिथ्या अहंकार त्रिगुणात्मक भाव को आगे बढ़ाएगा, अपने खास करके तमोगुण और रजोगुण के कारण सारी परेशानियां बनी रहेगी। कोई सत्वगुण में भी स्थिर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे संक्षिप्त में चार निषेध ही दिए, लेकिन चार निषेध जो है, मांस मच्छी अंडा नहीं खाना, परस्त्री व्यभिचार नहीं खाना, नशे वाली चीज नहीं लेना और जुआ नहीं खेलना, लेकिन ये चारे चीजों में कली ने प्रवेश किया इसलिए। तो चार निषेधों का पालन करके हम कम से कम थोड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं, गारंटी भी देते हैं कि हो जाएगी, लेकिन उसमें जरा बारीकाई से तो देखो, यदि ये नहीं चलता है तो ये चलता है। जबकि हम सिर्फ उसको पूर्ति करते रहते, हमारी इंद्रियां तृप्तियां चालू रहती, इंद्रियों की सारी तृप्तियां चालू रहती, उसका क्या। हाँ? जो विषय हमें हमेशा सताते, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जब हम कर्षित जीव हैं, इन चीजों से आकर्षित जीव हैं, तो यदि ये कर्षण माया करती है, लेकिन कृष्ण तो सर्वाकर्षक और उसमें बलराम संकर्षण आकर्षण करने वाले इतने जबरदस्त ताकत वाले हैं, उनका यदि हम इनकी अवगणना करते हैं, इनके सिखाए पर हम ध्यान नहीं देते, हमें आगे बढ़ने का मौका देते भी हम मौके का फायदा नहीं उठाते, तब उपेक्षा ही समझते हैं। हम उपेक्षा करते हैं, जब हम उपेक्षा करेंगे तब भगवान उपेक्षा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम तो दिखावा कर रहा है मेरे भजन की, लेकिन उपेक्षा कर रहा है, दिखावे में उपेक्षा होती है, और भगवान उपेक्षा करना जानते हैं, क्योंकि ताम तथैव भजामि। ये मेरी शरणागत हो रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन मेरी वास्तविक उपेक्षा करता है, वो मेरा सुनता ही नहीं। अर्जुन को भी बारंबार कहते हैं तच्छृणु, छृणु में परमं वच, तो सुनने पर ध्यान, लेकिन सुनने की दानत ही नहीं। तो हमने मायापुर में अभी पिछले हफ्ते 4 दिन पहले एक भगवद्गीता पर एक क्लास दिया था, जो 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें भगवान 3 प्रकार के श्रद्धा के विषय, श्रद्धा के बाद धृति का विषय की चर्चा करते हैं। धृति यानी धारणा, डिटर्मिनेशन, वो भी रंजित हो जाती है। हमारा डिटर्मिनेशन जो है ना, धारणा का विषय, जैसी जिसकी धारणा वैसी उसकी गति है, तो उसी तरह श्रद्धा भी, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृश, ये नियम बन जाता है। लेकिन ये त्रिगुणात्मक श्रद्धा होती है तो त्रिगुणात्मक धृति भी बनती है। धृति है ना धारणा या संकल्प, हम तो संकल्प मन द्वारा ही समझते हैं, वो कितना ऊपर ऊपर का है। अपना संकल्प क्या है, एक ब्राह्मण भी यदि कोई कोई अनुष्ठान कराता है या कर्मकांड कराता है, तो उसमें संकल्प की बात करता है पहले, और सभी की साक्षी लेता है, कौन से समय में, किस स्थल में, किस गोत्र में कहा, ये सब जाहिर करना पड़ता है। लेकिन संकल्प का हेतु क्या है वो भी बुलवाता है। तो ज्यादातर हम अपने 3 गुणों की पूर्ति के हेतु के लिए ही संकल्प करते हैं, इसलिए ये जो मन दूषित होता है, प्रकृति मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो यदि मन दूषित है तो संकल्प भी दूषित है। ये सारे संकल्प हमारी कोई सिद्धि नहीं करते, यदि होती है तो काम चला होती है। जैसे देवताओं के बारे में संकल्प करने वाले, इस जैसी जैसी श्रद्धा उन पर भी रखने वाले, इनकी भी जो फलश्रुति है वो काम चलाव है, क्षणिक है, वो हमेशा की नहीं है। इसलिए लोगों को छोटी बुद्धि वाले कहे, भगवान ने कहा अल्प बुद्धि वाले, क्लेशो कह रहे हैं कि देवान देव यजो जानति मध्याजिनोपि माम, और ये चाप्य अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान विनीता ते अपि मामेव, यजन्ते अविधि पूर्वकम, भगवान की अवगणना करके, इनकी उपेक्षा करके हम देवताओं की पूजा करते हैं। जो भोग की अपेक्षा करते हैं, जो धारणा के अनुसार, संकल्प के अनुसार हम ये अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान की उपेक्षा बनी रहती। इसीलिए ये अल्प बुद्धि वाले कहते हैं तद भवत्यम अल्पमेधसाम। तो हमें क्षणिक परिणाम के लिए या इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें क्या फायदा। वैसे बहुत आसानी से इंद्रिय तृप्ति तो कर्म से हो सकती है, क्षिप्रम ही मानुषो लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, क्षिप्रम तुरंत कर्म से सिद्धि होती है। लेकिन ऐसी श्रद्धा, उसमें भी हमारी राजसिक और मानसिक तामसिक प्रवृत्तियों देवताओं को बीच में फंसाती, यानी कि हम भगवान की उपेक्षा करके हम देवताओं की शरण लेते हैं और वहां भी फायदा नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी भी उपेक्षा करते हैं। इसलिए सीधा संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, भगवान को ही एकमात्र राजी रखने के, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा जीवन बना। नहीं तो फंसे ही फंसे समझो, चाहे हम कहीं भी सेवा करते हैं। गुणों का प्रभाव, यानी कि भौतिक गुणों का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, तो हम बहुत आराम से भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं वो दिखाई देता है। लेकिन भौतिक गुणों में रंजित या देहात्म भान में फंसे हुए, इनकी नजर में नहीं आता, इनकी नजर में नहीं आता। धीरे धीरे प्रगति करने में वो लोग कहते हैं, लेकिन हाँ उपेक्षा की तो गलती हो गई ना, इसलिए सुधरने का भी मौका देते हैं। लेकिन यदि हमारा संकल्प यानी धृति धारणा डिटर्मिनेशन यदि भगवान की असली शरणागति लेने में नहीं है, तो श्रद्धा भी ऐसी बनेगी, श्रद्धा ऐसी बनेगी तो बुद्धि भी ऐसी बनेगी, क्योंकि धृति में जो ध शब्द है वो धिया या बुद्धि के विषय में है, और श्रद्धा भी इसमें भी ध आता है, सतत धानाम, यानी कि सनातन सत्य पे बुद्धि द्वारा धारणा करना, ये श्रद्धा शब्द। तो सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत, और ये श्रद्धा की व्याख्या बनती है। यदि इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो बुद्धि के बाद मन आता है, तो जैसी बुद्धि है वैसा मन बनेगा। इंद्रियाणि परारहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनः शस्तोर परो बुद्धे बुद्धेस्तु सदैव। आत्मा की नजदीक बुद्धि है, मन नहीं है। अपन को धारणा चाहिए पहले, मन को बुद्धि द्वारा कैसी धारणा है वो समझानी पड़ेगी। मन कमजोर, यदि मन ही हमारा प्रबल होता है तो हम सेंटिमेंटल बन जाएंगे, बुद्धि सेंसिटिव नहीं बनेंगे। सेंसिटिव यानी हिंदी में क्या बोलते हैं सेंसिटिव को, संवेदनशील, संवेदना और भावुकता दोनों में अंतर है। संवेदना बुद्धि का विषय है, भावुकता मन का विषय है। ज्यादातर देखो हमारे जीवन में एवं पति पत्नी के संबंध में भी ये बीच में दखल करने वाली संवेदना है, तो भक्ति में सॉरी भावुकता है, संवेदना है। संवेदना यानी सेंसिटिव, सेंसिटिविटी कैसे आएगी जब बुद्धि ठिकाने है तब, नहीं तो भावुकता हमारी भक्ति में इतना रोड़ा बन के बैठती है कि हम भगवान की इच्छा को भी समझ नहीं पाते, इनका अनादर करते थे। ये विषय बहुत महत्व का है, उसकी पूरे पूरी विश्लेषण पूर्वक समझूती प्रभुपाद जी ने दी। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, भौतिकता की कृपा पर नहीं। भौतिकता के भी तो स्वामी भगवान है, इसलिए भौतिक चीजों हम यदि हमें मिलते रहते उसका मतलब यह नहीं कि ये भगवान की कृपा है, क्योंकि हम हमारी जो स्थिति बनी रही है, न तो बुद्धि का ठिकाना, नहीं तो श्रद्धा का ठिकाना, न मन का ठिकाना। तो इस तरह जो कमजोर भक्त हैं इनको ऊपर उठने के लिए ये स्पष्ट बात करने की आवश्यकता बनी रहती है। हम बाहरी ये भौतिक गुणों की ताकत से भक्त नहीं चलता, भौतिक प्रकृति का आश्रय नहीं लेता। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीन प्रकृति आश्रय, दैवीन प्रकृति वो अध्यात्म की प्रकृति, भजन्य मन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अनन्य मनस यानी कि हमारा जो निश्चयात्मक भाव है वो अनन्य होना चाहिए। तो ये विषय कितना गहरा है कि हम बेदरकार रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यकता का विषय है। कब तक हम उसका अनादर करते रहते हैं? ये विषय भगवान ने बताया, उसने रचना की है कि उनके पास जाने का मार्ग क्या है। तो जैसा संकल्प होगा वैसे, तो यदि हमारे मन में ये संकल्प नहीं है तो समझ विकल्प होता है, विकल्प को बहाना कहते, बहाना विकल्प, विरोधी कल्पना करना, विकल्प संकल्प। यहां की सब जगह से हमें सोचना है, सारी दिशाओं से, कहीं एक ही दिशा का भान होना चाहिए। यदि भगवान सर्वव्यापी हैं तो उनको कौन सी दिशा में भजन कर सकते हैं? सभी दिशाओं में कोई है तो अब बात नहीं, पर फिर भी भगवान में ज्यादा श्रद्धा और भक्ति का विषय इत्यादि और या भौतिक तीन गुणों की समस्याएं का निवारण करने में हम वास्तु भी देखते हैं, भगवान को पूर्व पश्चिम की दिशा भी देखते हैं, लेकिन जहां विशुद्ध भक्ति का उपचार है तो वृंदावन में जाओ, हमारे राधा श्याम सुंदर उत्तर की ओर मुंह कर बैठे, इनको दिशा के क्या आवश्यकता। हम यहां पूर्व पश्चिम देखते हैं, यहां किसी ने पूर्व पश्चिम देखा? जगह ही इतनी मिली थी पहले है? कहने का मतलब है कि ये जो विषय है भगवान की उपेक्षा करना, तो भगवान भी हमारी उपेक्षा करेंगे, सही बात है, नहीं तो साधन होते ये सब क्यों होता है? माता पिता होते हुए भी बच्चा इनके सामने मर जाता है, डॉक्टर होते हुए भी, अरे दवाइयां भी होती हैं फिर भी मरीज मर जाता है, और अच्छी सी अच्छी नौका होते हुए भी आदमी डूब मरता है। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा मूल कारण बताया है, भगवान की उपेक्षा से भगवान उपेक्षा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव विजानामि, यानी कि ये कर्म और विपाक, कर्म विपाक ऐसे कर्म हैं जो हमें उल्टा परिणाम देता है, उसे विपाक विरोधी, हम जो धारणा करते हैं वो नहीं होता है। ये कर्म विपाक से ही हमारी अधोगति होती है, दूसरे जन्म में फायदा नहीं होता। ये बात बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जरा देखो कि मैं अपने करे कराए पर क्या भगवान को खुश रखा, इनके आज्ञा में रहकर मैंने काम किया, सारे दिन का हिसाब दे सकते हैं। देना चाहिए। यहाँ संकीर्तन मूवमेंट में कितने पुस्तक वितरण हुए ये हम भगवान को कहकर सुनाते हैं, लेकिन भगवान पिछले 24 घंटे में मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपको राजी रखने का प्रयत्न किया, वो भी तो सुनाने चाहिए। वो सुनाने के लिए हमें यहाँ आना चाहिए, नहीं कि प्रसाद मिलेगा, एकमात्र हेतु नहीं प्रसाद यानी भगवान की कृपा। अब भगवान को खुश नहीं करके हम प्रसाद पाते रहते तो एक प्रकार की सिर्फ भौतिक श्रद्धा बनती रहे, लेकिन आध्यात्मिक श्रद्धा का क्या? भौतिकता का तो हम उद्धार नहीं कर पाते, एक आध्यात्मिकता में ही उद्धार हो पाता है। आत्मा को ऊपर उठाना है, शरीर को ऊपर उठाना नहीं। शरीर के विषय भोगों के लिए हमें मंदिर नहीं ज्वाइन करना, तो चार आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचारियों के कर्तव्य ही कुछ अलग होते हैं। जो विषय की बातें ब्रह्मचारियों में होती है तो समझना गृहस्थी जल्दी आ जाएगी, गिरवा छोड़ दो, पहन दो सफेद कपड़े, क्योंकि विषयासक्त ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्म यानी भगवान का तत्व, जो हम छोटे ये तो पर ब्रह्म है, तो सेवा करना ये करना विषय ही दखलगिरी करते हैं तो सावधान। ये यदि चालू रहता तो समझना कि उपेक्षा कर रहे हैं हम, तो भगवान भी हमारी उपेक्षा करेंगे। यानी कब ऐसा नोता आ जाएगा हमें पता ही नहीं, क्योंकि बचा नहीं पाएंगे, सब होते हुए बच नहीं पाएंगे। प्रहलाद महाराज के पास तो कोई साधन नहीं था, राजा के बेटे हो गए फिर भी उन्होंने न तो राज कैसे करना है वो कैसे करना है पॉलिटिक्स उसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भगवान की शरणागति भगवान के हरि कीर्तन में ही उन्होंने ले रखी वो स्मरण मात्र से। उनको तो स्कूल में भी मना किया था कि दोबारा तो कीर्तन करेगा तो फेंक देंगे, लेकिन वो बिल्कुल भयभीत नहीं था। क्योंकि एकमात्र शरणागति ऐसे चिंतन द्वारा ही एकमात्र धर्म बन जाता, सततम स्मर्तव्यम विष्णु स्मर्तव्यम न जातु जित सर्व विधि निषेध मिस। सिर्फ ये तो स्मरण की सेवा के लिए सब सहारे विधि विधान बताए गए, स्मरण बनता है। एकादशी में अन्न नहीं खाओ, इसमें भगवान का स्मरण बनेगा? नहीं, हम और क्या खा सकते हैं, उस पर स्मरण बनता है और ज्यादातर तगड़ा ही बनता है। हर रोज के प्रसाद से एकादशी का प्रसाद तगड़ा ही बनता है। ठीक है प्रभुपाद जी की, चलो कम से कम प्रसाद खाते हैं, शरीर शुद्धि होगी, लेकिन शरीर तो नाशवंत है। वो तो मानसिक शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि, संकल्प शुद्धि इत्यादि के लिए प्रसाद दिया कि देखो प्रसाद भगवान की कृपा से मिलता है ना, स्व प्रसाद न दिलो भाई। तो वो मानसिक शुद्धि के लिए, भावना की शुद्धि के लिए, पेट की शुद्धि के लिए नहीं। कितनी बार प्रसाद खा के बीमार पड़े हैं, काम चलाओ रिलीफ मिली होगी, रेचक दवाई भी खाई होगी, शरीर को इसमें से निकाले, तब क्या हो गया, प्रसाद का क्या अनादर हो गया, अतिरिक्त करना भी, हद के उपरांत ज्यादा खाना, अत्याहार नुकसान करता है, तब प्रसाद कहा गया। भगवान की कृपा कहा गई, वो तो डाइजेस्ट होती ही नहीं, क्या अपने शरीर में भी नहीं जानती। कहने का मतलब है कि जैसी भावना हम प्रसाद पर भी रखते हैं ना, उसी तरह हमारा विकास आगे बढ़ सकता है या कुंठित हो जाता है। ये तो सारी चीजें भगवान का प्रसाद है, ये हवा पानी सूर्य का, आप ये जीवन इस पृथ्वी पर बने रहना, टिक रहना, ये तो भगवान ने बनाया ही। लेकिन ये सब अबुद्ध जीव, जो ईर्षालु जीव है, इसके लिए बनाई है और उसको मौका दिया जाता है। और मनुष्य जन्म भी 84 लाख योनि में एक बार मिलता है, जिसमें हम छोटे से जीवन में बहुत त्वरित गति से प्रगति कर सकते हैं भगवान की ओर जाने के। ऐसे मौके का फायदा हम क्यों गंवाए। तब भक्ति में तो ये सब सीखना होता है। कई लोग भावुकता वाले होते हैं, तो भावुकता में वो तो दिन में भी स्वप्न देखते रहते हैं, और कभी कभी प्रभुपाद जी का स्वप्न आता है इन लोगों को, कभी कभी भगवान के भी सीधे रास खेलने के बाद स्वप्न आता है। रात को तो स्वप्न आता ही रहता है, लेकिन दिन में भी आने लगता है। ऐसे भावुक लोग अपने स्वप्न का अर्थ गठन करना चाहते हैं। वो तो समझते हैं कि हम शायद बहुत पवित्र भक्त होंगे, इसीलिए आता है। चलो गुरु महाराज से पूछो, मुझे ऐसा गुरु महाराज ने बेवकूफ मत मान, वो तो सीधा कह देंगे कि ये स्वप्न स्थिति न तो जागृत है न सुषुप्त है, उसे स्वप्न कहते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए तो जागृति की आवश्यकता है, स्वप्नों की आवश्यकता नहीं होता है। कहां लिखा है? ऐसी भावुकता आपको मिथ्या अहंकार पहुंचा दे। बाहर से बहुत आदर सम्मान इत्यादि का व्यवहार करते होंगे, लेकिन स्वप्न का जो गहरा प्रभाव हम पर छा जाता है, वो भी भौतिकता है। हम भगवान को खुश करने के बजाय अपने को खुश रखना चाहते हैं, यानी कि हमारी धारणा ठीक नहीं है। जब धारणा ठीक नहीं तो हमारा ध्यान भी ठीक नहीं, तो सारा जीवन ऐसे स्वप्न के ध्यान में भी बने रहने वाले होते हैं। कि मैं ठीक हूं, मुझे किसी की सराहना की आवश्यकता नहीं, मैं भक्तों के बिना भी जी सकता हूं। ओहो, कितनी भयानक अवस्था है जब भक्तों के बिना भी जी सकते। इन चीजों का ख्याल क्यों रखने को कहते हैं? क्योंकि भगवान का ये मत है और उसके मत के अनुसार शास्त्र रचे गए हैं। किसी बहुत ज्ञानी खोपड़ी ने ये शास्त्र नहीं बनाए। कॉलेज में पढ़कर त्रिकालज्ञ तो नहीं बन सकते, कोई बना है तो ऐसे बेवकूफों के पास हमें शास्त्र का की आलोचना नहीं स्वीकारनी चाहिए। त्रिकालज्ञ क्या है? भगवान त्रिकालज्ञ है, भगवान के विशुद्ध भक्त भी। ये सारी बातें इनकी अनुभवगत होती हैं, क्योंकि भक्त हमेशा का होता है, उसका नाश कभी नहीं होता। भक्त की जो जागृति है तो पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में बनती रहेगी। वो जागृति में भूतकाल में क्या हुआ था उसका सारा परिचय उसको होता है, किस काल में क्या होता है ये सब उसका परिचय है। नहीं तो श्रीमद् भागवत में ये भविष्य या भविष्य पुराण में कलयुग में क्या होने वाला है और कौन आकर सफाई करेगा ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? ये कोई कल्पना का विषय नहीं, जैसी धारणा है उसके अनुसार हमारी प्रगति है। आप माला करो, माला करते समय भी धारणा क्या है किसी ने देखी है? किसी ने जानी है? किसी ने ढूंढ निकालने की भी कोशिश की है? माला करते समय हमारी धारणा यदि कमजोर है तो माला पर श्रद्धा भी कमजोर होगी। श्रद्धा कमजोर यानी कि हम ज्यादा मानसिक ढंग से स्वीकारते हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं स्वीकारते। यानी कि ये मन सीधा हमें भौतिक अवस्था पर ले जाएगा। जो ये सारी सफाई करने की ताकत भगवान के नाम में है, सारी सफाई की भगवान के नाम में, लेकिन यदि संकल्प ही बेकार है तो जो धारणा बेकार है तो वो सारी अन्य भावनाओं को भी दूषित बनाए रखे। तो ये देहात्म भान की बात कर रहे हैं। जहां तक देहात्म भान चालू रहता है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, देहात्म भान पर जितनी आसक्ति है उसकी भक्ति कमजोर बनेगी, श्रद्धा भी कमजोर रहेगी, सब कुछ। भगवान आपका शुद्ध नाम मैं कैसे जपूं, मैं जपूं और इस जन्म में जपूं, ऐसी धारणा यदि जिसकी बनी रहती है तो अवश्य इस जन्म में वो ये सारी स्थितियों को वो पसार कर सकता है और भगवान की इच्छा के अनुसार वो जीने का प्रयत्न कर सकता है। ये धारणा का विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि धारणा ही ध्यान लगाने के लिए समर्थ होती है। ये योगी अष्टांग योगी में तो आप जानते हैं कि किन आठ क्रम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो जो धारणा है वो मन का विषय नहीं है, ध दिया बुद्धि का विषय बताया है। क्योंकि क्या समझा है, कैसी बुद्धि आई है उसकी, जैसी बुद्धि है तो वो अनुकूल बनेगी, लेकिन बहुत अनेक अनेक जन्म बाद जब धारणा सही ढंग की होती है, भगवान के अनुरूप होती है, भगवान की शरणागति के लिए अनुरूप होती है, जैसे शास्त्र में बताई है वैसे बनती है, तो आगे त्वरित गति हो सकती है। इसी जन्म में भगवान के धाम को जाने के लिए सक्षम बन जाते हैं, नहीं तो अक्षम रहते हैं। तो ये विषय थोड़ा गहरा बनाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना हमारे वैष्णव कवियों ने लिखी है। धारणा उच्च प्रकारी होती है और सारा व्यवहार विनम्रता का उल्टा ही बनाना पड़ता है। अपने वैष्णव कवि सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिकर हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना देखो, भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना देखो, पूरी शेर की टे, लेकिन कितनी ऊंचाई पर चढ़े हैं, वो आंतरिक ऊंचाई कैसे आई, कैसी धारणा, व्यवहार तुच्छ बना दिया, इतना तुच्छ हूं मैं, कितना विरोधाभास शरीर और आत्मा में, कितना विरोधाभास। तो शरीर के परिबल से हमें थोड़ा नियंत्रित रहने की आवश्यकता है, इसलिए चार नियमों का पालन करना है, वो पांच रात्रि की विधि और भागवत विधि। ये चार नियमों अपने शरीर को निर्बल बना देते हैं, शरीर की सारी भावनाओं को निर्बल बना देते, लेकिन सबल बनाने के लिए उल्टा हरियाणा, वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, ये भौतिक स्तर पे होता है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई जैसा ही हो गया, जीवन संग्राम है, ये जीवन संग्राम, ये आराम का, इंद्रिय तृप्ति करने का मौका नहीं है। ऐसे सोचने वाले भगवान की उपेक्षा करते हैं, तो समझो भगवान भी उसकी उपेक्षा करते हैं। और स्पीडी प्रगति होती है उपेक्षा में, स्पीडी कैसे, राजपुत्र चिरंजीव, तो विषय भोगी है राजा का बेटा, तो लंबा जी क्यों, जितनी ज्यादा करेगा उतना तेरा नाश जल्दी होगा। यप, राजपुत्र चिरंजीव मुनि पुत्र मां जीव, छोटा बेटा है मुनि का, वो पिता की सेवा कर रहा है, पिता मुनि है, जो इतने अपने कर्म को जलाने के लिए इतनी तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो छोटा बेटा इनको मदद करता है, वो भी मुनि की तरह रहता है। एक छोटे बच्चे जिसमें अपने कोई खुद के इच्छाओं की तृप्ति का नहीं, क्योंकि वो पिता पर आश्रित है। यदि छोटा बच्चा जो पिता का अनुकरण करके मुनि व्रत धारण करता है, तो उसको जीने की क्या आवश्यकता है, वो मुक्त है, न तो कर्म बंधन है, किसी भी प्रकार का ओब्लिगेशन है। आजकल के पिता माता तो क्या चाहते, हमारा बच्चा बड़े बड़ा होगा, पढ़ा लिखा होगा और शादी करेंगे, यानी कि फंसाएंगे, एक तो अज्ञानता में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, दूसरी तरफ शादी में और समस्याओं खड़ी करने के लिए। तब भक्त
उसकी मुश्किल ही मुश्किल हो जाती है। भक्ति का धंधा बिल्कुल विरोध है। तो हरि नाम की ताकत को एक्सपेडाइट करना है तो चार नियमों का पालन भी करना है। नहीं तो भगवान का नाम तो सब कोई जप सकते हैं, मांस खाने वाला भी जप सकता है, सब जप सकते हैं, कहां बाधा। लेकिन जैसे हम ये चार नियमों का पालन का वचन देते हैं दीक्षा के समय, तो सोचना चाहिए कि वचन यानी कि धारणा का समय वृद्धि, ऐसी धारणा करके हम छुएंगे। अभी तो चाय पीता हूं या नहीं बोल कर चल जाएगा, ये चलेगा। चार नियमों का पालन तीन आवश्यक है। सोचा बकरे तो ये सोच, चलो दीक्षा ही दे चालू रखेंगे। अब धंधा कौन कौन जाने, सब करते हो, इसलिए विकास नहीं होता। भगवान के सानिध्य में जो जो मौका मिल रहा है तो उसके लिए हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता होती है और अपने ही उद्धार के लिए करना होता है। तो हरि नाम के लिए भी कैसा संकल्प है, बाद में प्रश्न करते हो हमें ये मुश्किल आती है, हमें ये मुश्किल, हम कैसे करें कि हमारी ये मुश्किल, तो हम क्या कहेंगे, तेरी धारणा को ठिकाने रखना बता। चलो कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है, सूर्य प्रकाश पेशाब घर पे भी पड़ता है, वो स्वयं गंदा नहीं होता लेकिन धीरे धीरे उसकी भी सफाई तो करता है। तो ऐसे जो मन दूषित हो, बुद्धि बेवकूफ हो और श्रद्धा भी कमजोर हो फिर भी हरि नाम करता है तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ी समझदारी रखता है, जो सुज्ञ है, अज्ञ नहीं सुज्ञ, इनको तो इशारा ही काफी होता है क्योंकि वो समझने वाला है। गधा सुज्ञ होता है डंडे बिना आगे नहीं बढ़ता, कोई प्रेम से समझाओ फिर भी नहीं मानेगा, गुणों का प्रभाव है। उसी तरह यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवती, किसी भी विषय में देखो, भगवान के नाम के विषय में भी देखो, भगवान की सेवा के विषय में भी देखो, भक्तों के अंतरंग व्यवहार के विषय में भी देखो। जहां भक्ति का विषय है, जहां भक्ति का ही माध्यम बना रहता है और जो जो सारी चीजें प्रभुपाद जी ने उसमें भगवान की प्रीति के लिए उपयोग करने को कहा, सारी इच्छा भी भगवान की प्रीति के लिए यदि करे तो उसको जोशेत सर्वकर्माणि मुक्त संगम समाज, वो करने देना है लेकिन भगवान की प्रीति का संकल्प है। भक्तों के लिए तो एक ही संकल्प होता है कि भगवान की प्रीति बने, यानी कि भगवान हमारी उपेक्षा कभी नहीं करें ऐसा नहीं होना, यानी कि हम भगवान के लिए इतने सावध रहेंगे कि भगवान हमारी उपेक्षा करने का इनको मौका भी नहीं देते। इस ढंग से संकल्प हो गया है टाइम। बोलो महाप्रसाद गोविंद जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।